समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सुप्रभात, एक नए दिन की शुरुआत नई सुबह से करते हैं। आकाशवाणी FM गोल्ड पर मैं हूं आपके साथ फरहत नाज, और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सुभद्रा रामचंद्रन। नमस्कार सुभद्रा।
हेलो देयर फरहत, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड ऑल आवर लिसनर्स ट्यून इन टू अस दिस ट्यूसडे। सो फ्रेंड्स, स्टे विद अस, enjoy this edition of Aaj Savere. Farhat, let us begin with some news headline.
जी बिल्कुल सुभद्रा, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असम यात्रा से जुड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे गुवाहाटी में एडवांटेज असम के दूसरे चरण में निवेश और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र का उद्घाटन करेंगे। दो दिन के इस शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में 7 मंत्री स्तरीय सत्र और 14 विषयगत सत्र शामिल हैं। इसमें औद्योगिक विकास, वैश्विक व्यापार साझेदारी और असम के जीवंत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें 240 से अधिक प्रदर्शक शामिल होंगे।
President Draupadi Murmu will embark on a 5-day visit to 3 states starting today. The President will travel to Bihar, Madhya Pradesh and Gujarat during her visit, which will conclude on the 1st of March. Today she will grace the centenary celebration of the Patna Medical College in Bihar. Tomorrow the President will attend a mass wedding ceremony organized by Bageshwar Jan Seva Samiti at Ghada, Chhatarpur, Madhya Pradesh. She will also pay tributes at the Statue of Unity and witness the Narmada Aarti at Kevadia, Gujarat tomorrow. On Thursday the President will visit the Ekta Skill Development Center at Kevadia and grace the 44th convocation ceremony of the National Institute of Design at Ahmedabad. On Friday, she will grace the 3rd convocation of the National Forensic Sciences University in Gandhinagar. On the same day, the President will visit Smritivan Earthquake Memorial at Bhuj. On Saturday, the President will visit Dholavira UNESCO World Heritage Site.
वहीं जम्मू कश्मीर में सरकार ने महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में जम्मू स्थित प्रवासी और प्रधानमंत्री पैकेज कर्मचारियों के लिए 4 दिन के विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति दी है। सरकार के आदेश के अनुसार प्रशासन ने कश्मीर घाटी में काम करने वाले कर्मचारियों को ये छुट्टी दी है। ये अवकाश 25, 27 और 28 फरवरी तथा 1 मार्च को होगी।
Days after imposing several restrictions on New India Cooperative Bank, Reserve Bank of India, RBI, has allowed withdrawal of up to 25,000 rupees per depositor with effect from Thursday. In a press release, RBI said that with this relaxation, more than 50% of the total depositors will be able to withdraw their entire balances and the remaining depositors can draw up to 25,000 rupees from their deposit accounts. It further stated that depositors may use the branch as well as ATM channel of the bank for this withdrawal. RBI has also reconstituted the committee of advisors to the administrator. The committee now consists of Ravindra Sapra, former general manager of SBI, Ravindra Tukaram Chavan, former deputy chief general manager of Saraswat Cooperative Bank, and Anand M. Golas, a chartered accountant. On the 13th of this month, RBI had directed the New India Cooperative Bank not to allow withdrawal of any amount from savings bank or current accounts or any other account of a depositor.
विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत ने मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए सदैव सक्रिय भूमिका निभाई है। डॉक्टर जयशंकर ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के 58वें सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण अपने भागीदारों की प्राथमिकताओं के अनुरूप क्षमता निर्माण और मानव संसाधनों तथा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर केंद्रित रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद से निपटने में दृढ़ और समझौता न करने वाला है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत ने आर्थिक विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है और लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
In the United States, new FBI Director Kash Patel was sworn in as the acting chief of the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, ATF, taking the helm of two separate and sprawling Justice Department agencies. Mr. Patel was sworn in at ATF headquarters just days after he became the director of the FBI. He will now oversee the Bureau's roughly 5,500 employees that's responsible for enforcing the nation's laws around firearms, explosives, explosives and arson. Among other things, it is in charge of licensing federal firearms dealers, tracing guns used in crimes, and analyzing intelligence and shooting investigations.
और सुभद्रा अगर बात की जाए काशी तमिल संगमम की तो केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजुमदार ने कहा है कि ये हमारी सभ्यता तथा संस्कृति के दो महत्वपूर्ण केंद्रों काशी और तमिलनाडु के बीच वर्षों पुराने संबंधों को दर्शाता है। कल वाराणसी में काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री मजुमदार ने कहा कि इस आयोजन से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना मजबूत हुई है। कार्यक्रम में उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी शामिल हुए। और अब खबरें महाकुंभ से। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ऐतिहासिक महाकुंभ का आधिकारिक समापन कल महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर होगा। प्रशासन ने इसे दिव्य और भव्य बनाने के लिए व्यापक तैयारी की है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए कई पहल की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
प्रयागराज के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मानदंड ने बताया कि महाकुंभ के समापन पर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिए गए निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। साथ ही पुलिस, होमगार्ड, NDRF और प्रशासनिक दल मुस्तैद रहेंगे ताकि भीड़ प्रबंधन सुचारू रूप से किया जा सके।
तैयारियां हमारी पूरी हैं। लगातार जितने हमारे शिव मंदिर हैं सभी की साफ सफाई, सभी पे सुरक्षा व्यवस्था, श्रद्धालुओं के हितार्थ जितने कदम उठाए जाने थे, जैसा अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली VC में हम सबको डायरेक्शन दिया था, तो उस पे हम सभी लोगों ने काम किया है। वहाँ पे बैरिकेडिंग करानी हो, पुलिस की व्यवस्था करानी हो, प्रशासनिक अधिकारियों को लगाना हो और मंदिर प्रबंधन के साथ में बेहतर तालमेल, वो हम सबने सुनिश्चित किया है।
दर्शन व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन केंद्र और सहायता बूथ स्थापित किए गए हैं। आदर्श के साथ अभिषेक कपिल, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:30, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 MHz पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर।
Moving on to some sports news, a 12-member Indian squad for International Shooting Sport Federation World Cup Shotgun has been announced. The event will be held in Nicosia, Cyprus from May 3rd to 12th this year. Tokyo Olympian Kianan Chennai and seasoned Mehraj Ahmed Khan are included in the squad. As per the national selection policy, shooters ranked 4th and 6th in the India rankings of the respective individual events have been selected for this particular World Cup. Tokyo Olympian Kianan Chennai will lead the men's trap trio, while Paris Olympian Rajeshwari Kumari will headline the women's trap competition.
और श्रोताओं, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर और रुक कर लेते हैं चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के समाचारों का। तो सुभद्रा, सबसे पहले क्या है आपके पास चेन्नई में?
स्टार्टिंग विद न्यूज फ्रॉम चेन्नई, मिनिस्टर फॉर कमर्शियल टैक्सेस पी मूर्ति हैज सेड दैट द रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स फोकस रिमेन्स ऑन इंश्योरिंग दैट सिटीजंस रिसीव देयर डॉक्यूमेंट्स विदाउट डिलेज व्हाइल इट मेंटेन्स प्रॉपर वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स। चेयरिंग अ हाई लेवल रिव्यू मीटिंग, द मिनिस्टर इंस्ट्रक्टेड द ऑफिशियल्स टू टेक अप क्रूशियल रोल्स ऑफ रेगुलर इंस्पेक्शंस इन मेंटेनिंग service quality and boost the government revenue. He also said that 274 crore rupees were allocated for construction of 128 new registration department buildings over the past 4 years. While 31 buildings are already operational, officials have been instructed to fast track the completion of the remaining projects.
जी बिल्कुल। और बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबर से, तो आज से सरस मेले का आगाज होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सरस आजीविका मेले का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मेले का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों को उनकी आजीविका और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में मदद करना है। सरस आजीविका मेला 2025 में विभिन्न राज्यों के हथकरघा, साड़ियों और ड्रेस सामग्री का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया जाएगा। इस मेले में आगंतुक 30 राज्यों के स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों को देख सकते हैं। मेले में स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए 200 स्टॉल लगाए गए हैं। वहीं दिल्ली नगर निगम के सदन की बैठक आज नई दिल्ली के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर स्थित निगम कार्यालय में आयोजित की जाएगी। इस दौरान निगम से जुड़े कई प्रस्तावों को पेश किया जाएगा। बैठक में निगम के 12,000 अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने से संबंधित प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा।
Bengaluru News Now. The Indian Institute of Horticulture Research, IIHR, near Bengaluru is providing incubation facility for entrepreneurs taking up horticulture-based ventures. The incubation facility, named as Best Hort, is supported by NSTEDB, Division of the Department of Science and Technology, which comes under the central government. The incubation center came forward for hand-holding a metallurgical engineer from Dharwad, Praveen Harmat, who was seeking research support for creating a healthier beverage as a venture. The scientists in IIHR, Dr. Pushpa Chetan Kumar and Dr. Ranjita, worked on the project to develop a vegetable-based ready-to-serve beverage without added sugar and preservatives. The drink was made out of beetroot and carrot with highly acceptable taste and good nutritional quality. This beverage contained a good amount of antioxidants and could be stored for a month under room temperature without any microbial spoilage. After successfully testing it in a circle of friends, entrepreneur Praveen Harmat is now establishing a production plant in Dharwad to produce and market this new healthier beverage.
और सुभद्रा, पिछले कुछ सालों से जिस तरह मछली पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है वो भी काफी उल्लेखनीय है, जो कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी बराबर की हिस्सेदारी ले रहा है। महाराष्ट्र मत्स्य पालन और बंदरगाह मंत्री नितेश राणे ने कहा है कि मछली उत्पादन बढ़ाने और समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग काफी महत्वपूर्ण है। वे मुंबई में राज्य सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल AI तकनीक पर काम कर रहे छात्रों से बातचीत कर रहे थे। चर्चा समुद्र तट पर घुसपैठ को रोकने और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के साथ साथ समुद्री और मीठे पानी में मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए AI तकनीक का उपयोग करने पर केंद्रित थी। इस दौरान मौजूद छात्रों ने मछली उत्पादन में सुरक्षा और वृद्धि के लिए AI तकनीक के माध्यम से किए जाने वाले उपायों के बारे में नई अवधारणाएं सुझाई। इसके अलावा महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पार्टी ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बीड जिले के मासजोग से सद्भावना यात्रा का आयोजन किया है। उन्होंने राज्य के नागरिकों से इस यात्रा में भाग लेने की अपील की। सपकाल ने कहा है कि यात्रा मासजोग से शुरू होगी और करीब 51 किलोमीटर लंबी होगी और पीड़ शहर में इसका समापन होगा। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और समुदाय उन्मुख पहल है और उन्होंने सभी गैर सरकारी संगठनों और संगठनों से इसमें भाग लेने की अपील की है।
Getting to Hyderabad now, in Telangana, all-out efforts are underway to rescue 8 persons trapped inside the Srisailam Left Bank Canal, SLBC project tunnel, with concerted efforts by the joint rescue teams comprising Army, NDRF, SDRF, Singareni Collieries and others. A team of Navy divers from Visakhapatnam entered the SLBC tunnel near Dumalapenta of Nagar Karnool district to rescue the trapped workers yesterday. Despite relentless efforts by the rescue teams, no breakthrough has been achieved so far, as they had to navigate through thick muck, tangled iron rods and cement blocks to reach the accident spot in the tunnel. The personnel were trapped 14 kilometers inside the SLBC project on Saturday morning after a portion of its roof collapsed during the excavation work with a tunnel boring machine. State Irrigation Minister Uttam Kumar Reddy, who is monitoring the operations at the site, informed that this is a highly challenging situation and technical experts are working round the clock to resolve the crisis. He said the terrain is making it difficult to bring in any heavy machinery or equipment that may help remove the sludge faster. Farhat, over to you. Yunav, Calcutta.
Ji, Subhadra, Hyderabad se ab ruk kar lete hain Pashchim Bengal ka. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल मेडिकल कॉलेजों और राज्य के अस्पतालों के इंटर्न, हाउस स्टाफ, पीजीटी और पोस्ट डायरेक्टरेट डॉक्टरों का मानदेय 10,000 रूपये करने की घोषणा की है। वे कोलकाता के ध्यानोदय ऑडिटोरियम में एक सम्मेलन चिकित्सक क्षेत्र नाम सेवा को संबोधित कर रही थी। बैठक में पश्चिम बंगाल के मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल, CMOH, राज्य अस्पताल अधीक्षक शामिल हुए। मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों को सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों की सुरक्षा में शामिल किया जाएगा। उन्होंने वरिष्ठ डॉक्टरों से जूनियर डॉक्टरों का मार्गदर्शन करने और उनके काम की निगरानी करने का भी आग्रह किया और उन्हें 8 घंटे की ड्यूटी करने की सलाह दी। महानगरों की खबरों के बाद अब मौसम का रुख कर लेते हैं। तो आज राजधानी दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, वहीं अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मुंबई में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कोलकाता की अगर बात की जाए तो न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा।
Chennai and Bengaluru are expected to have mist in the morning. Minimum temperature in Chennai was 23 degrees Celsius and the maximum will be around 33 degrees Celsius. In Bengaluru, the minimum temperature was 18 degrees Celsius, while the maximum will be around 33 degrees Celsius. Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between a minimum of 19 degrees and a maximum of 34 degrees Celsius.
और अब समय है इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करने का। तो सुभद्रा, सबसे पहले क्या है इतिहास में खास?
Yes, I'm going to the year 1862, right?
जी.
US paper money was first introduced into circulation after the passing of the Legal Tender Act to help finance the Civil War. And in 1870, American clergyman, educator and politician Hiram Rhodes Revels was sworn in to the US Senate, becoming the first African American to serve in the US Congress. And 1908 this day, the Hudson River Railway Tunnel opened. The commuters began traveling between Manhattan and Hoboken in just 10 minutes. And 1930, the first bank check photographing device patent was issued in the United States to its inventor, George Louis McCarthy, who called it a checkograph.
और वहीं बात की जाएगा 1964 की, तो विश्व प्रसिद्ध मुक्केबाज मोहम्मद अली, जिन्हें उस समय कैसियस क्ले के नाम से जाना जाता था, ने सोनी लिस्टन को सातवें राउंड में हराकर विश्व हैवीवेट खिताब अपने नाम किया। वहीं सन 1988 में भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाले देश में बने पहले प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी का सफल परीक्षण किया।
In 1991, the Warsaw Pact was disbanded following the end of the Cold War. The defense treaty between eight communist states had lost its purpose. It had been signed in 1955 as an antagonist of NATO. And in 2012, WHO declared India polio-free, removing it from the list of polio-endemic countries.
और अब आइए याद करते हैं उन महान विभूतियों को जिनका जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है।
So I came to see him, to listen for a while. And there he was, this young boy, a stranger to my eyes, strumming my fate with his fingers, singing my life with his words, killing me softly.
Friends of music, friends of soul music, the world has just lost the queen of R&B and soul, Roberta Flack. This American songstress was a trained classical piano player and her ballads were gems. She is the only solo artist to win the Grammy Award Record of the Year for two consecutive years. The First Time Ever I Saw Your Face won the 1973 Grammy and Killing Me Softly with This Song won the 1974 Grammy. Of course, our signature tune is playing in the background, Killing Me Softly. She was born on February 10, 1937, had just turned 88 when she had just passed away.
अश्रुतों, आज ही के दिन जन्म हुआ था भारत के प्रसिद्ध विद्वान, साहित्यकार और शिक्षा शास्त्री अमरनाथ झा का। वे हिंदी के प्रबल समर्थकों में से एक थे। हिंदी को सम्माननीय स्तर तक ले जाने और उसे राजभाषा बनाने के लिए अमरनाथ झा ने बहुमूल्य योगदान दिया। उन्हें कुशल वक्ता के रूप में जाना जाता था। उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की। शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए वर्ष 1954 में पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। अमरनाथ झा कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए विदेश गए। शिक्षा जगत के वे काफी स्तंभ थे। अमरनाथ जी का अध्ययन भी काफी विशाल रहा। हिंदी हो, संस्कृत या फिर उर्दू, अंग्रेजी, सभी भाषाओं के साहित्य से उन्हें काफी लगाव था। विचारधारा नामक हिंदी पुस्तक में उनकी आलोचनाओं से पता चलता है कि वे बंगाली के भी अध्येता थे और संगीत प्रेमी भी। साथ ही उनको चित्रकला से भी काफी लगाव था। भावना सीमा बुद्ध नहीं थी। आधुनिकता से प्रभावित एक वैज्ञानिक विचारक भी रहे।
Remembering the legendary Australian cricketer Don Bradman, by name of Sir Donald George Bradman, who went away this day in 2001, one of the greatest run scorers in the history of the game, Don was knighted by King George VI in the 1949 New Year's Honours list for his services to cricket and Commonwealth relations. Now, friends, staying in the same subject, another legendary batsman, wicketkeeper from our own land, Farooq Engineer, celebrates his birthday today. Born in Bombay, in 1938, he was an experienced test match player. He was a wicketkeeper batsman, usually an opening batsman. In 1968, when English cricket allowed its country clubs to sign overseas players, Engineer joined Lancashire alongside West Indies batsman Clive Lloyd. Of course, he spent 9 seasons there until he retired in 1976.
और आज ही के दिन हमें अलविदा कहा शमशुल हुदा बिहारी ने, हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार रहे शमशुल. इनका जन्म बिहार के आरा में हुआ था. आरंभ में कलकत्ता में रहते थे, जहां से 1947 में इन्होंने बम्बई का रुख किया. इन्हें बांग्ला भाषा में भी महारत हासिल थी, पर इन्होंने हिंदी और उर्दू में रचनाएं की. एस एच बिहारी ख्वाबों और ख्यालों से दूर यथार्थपरक यानी जीवन के सच को बयां करने वाले गीत लिखने के लिए काफी प्रसिद्ध थे. और उनका बहुत ही पुराना एक गीत है जो मुझे बहुत ही पसंद है, सुभद्रा, मुझको सहारा देने वाले. आइए सुन लेते हैं.
मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया. जमाना जो देना सका तूने दिया. मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया. से भटकते थे राहों में हम, कब से भटकते थे राहों में हम. दिल में छुपाए हुए दुनिया का गम, दिल में छुपाए हुए.
फिल्म कश्मीर की कली में उनके द्वारा लिखा हुआ गीत दीवाना हुआ बादल भी काफी लोकप्रिय रहा.
दीवाना हुआ बादल सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा ले प्यार ने अंगड़ाई. दीवाना हुआ बादल तो मेरी तकदीर न थी, तुम सा जो कोई महबूब मिले.
शमशुल हुदा बिहारी के गीत आम आदमी और उसके दर्द को शिद्दत से बयां करते थे.
Remembering the world-renowned Spanish guitar player Paco de Lucía on his death anniversary today. Paco's real name was Francisco Sanchez Gomez, a flamenco guitar specialist, and to evolve the art of flamenco style, Lucía Paco had made several immersions in jazz and has done several fusion albums with jazz and classical artists. And of course, he's made 3 albums with John McLaughlin, Larry Correll, and Aldi Meola, with whom he has toured internationally also. And friends, 4 young musicians from Liverpool, England in early 60s made history and created a cultural phenomena leading to Beatlemania. The world still can't get enough of their sound. Today, my friends, the band's youngest member, also called the Baby Beatle, George Harrison, took birth in the year 1943. One of the most gifted songwriters of his generation, George created some incredible tracks. His friendship and association with Pandit Ravi Shankar transcended from sitar lessons to an immersion in Indian culture and spirituality. Harrison embraced Hinduism, involved with the Hare Krishna tradition, until his untimely death in 2001. 2 brilliant Harrison tunes to remember him.
To see you're really only very small, my clothes on within you and without you.
और हम लोग याद कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता बोम्मी रेड्डी नागी रेड्डी को। इन्हें सिनेमा में अभूतपूर्व योगदान के लिए 1986 में भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के सम्मान से सम्मानित किया गया था। इन्होंने चेन्नई में विजया वोहनी स्टूडियो की स्थापना की, जो एशिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो माना जाता है। और अब हम याद कर रहे हैं एक और भारतीय फिल्म अभिनेता डैनी को। हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता रहे। हिंदी फिल्मों के साथ साथ इन्होंने नेपाली, तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी काम किया। इन्होंने हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया। डैनी को पद्मश्री सम्मान मिल चुका है और 1975 में उनकी फिल्म काला सोना में भी उनकी भूमिका को काफी सराहा गया। तो आइए सुन लेते हैं इसी फिल्म से ये गीत।
ना उलझ रे हमसे, तू चली जा
उनके करियर की शुरुआत फिल्म जरूरत से हुई थी, लेकिन फिल्म मेरे अपने में उन्होंने सकारात्मक भूमिका निभाई। इन्होंने पहली प्रमुख नकारात्मक भूमिका फिल्म धुंध में निभाई। इसके बाद वे कई फिल्मों में दिखाई दिए और उनके अभिनय का कमाल तो आप देख ही सकते हैं। तो आइए सुन लेते हैं उनकी फिल्म से ये डायलॉग।
जो कपड़ों पे रंग चढ़ा दे उसे रंग रेजा कहते हैं, और जिंदगी पे जो मौत का रंग चढ़ा दे उसे चंगेजा कहते हैं। हमारे स्वागत के लिए तुमने फर्श पर कालीन नहीं बिछाया, इसलिए हमने लाशें बिछा दी।
तो सुभद्रा, उनकी दमदार जो आवाज है वो आज भी उनके श्रोता जो है वो याद करते हैं।
यस एंड फरहत, फील्ड हॉकी प्लेयर सुशीला चानू सेलिब्रेट्स अ बर्थडे टुडे। हर फर्स्ट ब्रश विद लाइव स्पोर्ट्स केम एट द एज ऑफ 7 व्हेन शी विटनेस्ड द फुटबॉल मैच ड्यूरिंग द नेशनल गेम्स दैट इज हेल्ड इन आवर स्टेट इन 1999। हर फैमिली मेंबर्स बीइंग स्पोर्ट्स लवर्स एनकरेज्ड हर टू टेक अप स्पोर्ट्स, बट इट वाज नॉट अंटिल द एज ऑफ 11 दैट शी एक्टिवली बिकेम इन्वॉल्व्ड इन स्पोर्ट्स व्हेन शी पिक्ड अप हर फर्स्ट हॉकी स्टिक। हर बिगेस्ट अचीवमेंट एज अ जूनियर केम इन 2013 व्हेन शी कैप्टन द टीम टू अ ब्रॉन्ज medal finish at the Junior World Cup in Germany. Last year in the month of January, Chanu received the Arjun Award from the President of India.
और अब हम याद कर रहे हैं एक ऐसी एक्ट्रेस को जिसने काफी कम उम्र में बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिव्या भारती की। 1992 में आई फिल्म गीत में दिव्या की सादगी को खूब सराहा गया। दिव्या की एक और फिल्म सफल साबित हुई। शाहरुख खान ने दिव्या के साथ ही 1992 में दीवाना फिल्म से डेब्यू किया। उस समय दिव्या महज 18 साल की थी। और आज एक और भारतीय फिल्म अभिनेता का जन्मदिन है, शाहिद कपूर का। जी हाँ, इन्होंने इश्क विश्क, विवाह, जब वी मेट, हैदर, कबीर सिंह जैसी फिल्मों में काम किया। साल 2007 में शाहिद के लिए काफी लकी रहा। इस साल रिलीज हुई थी फिल्म जब वी मेट को शाहिद की करियर की बेस्ट फिल्म का तगमा मिला। दस नवंबर 2006 को रिलीज हुई फिल्म विवाह काफी सुपरहिट साबित हुई। इसने शाहिद के करियर को नया मोड़ दिया, जिस फिल्म में शाहिद को फिर से बेस्ट एक्टर का तमगा मिला। और 2016 की उड़ता पंजाब भी उनकी काफी लोकप्रिय रही।
मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते,
और हम उम्मीद करते हैं आने वाली मंजिल भी हमारे लिए ऐसी ही अच्छी साबित होगी। इसके साथ ही सुभद्रा और फरहत को दीजिए कार्यक्रम यही समाप्त करने की इजाजत।
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार
नमस्कार।